This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I'm Gaurav Dhawanlal and with me is my co-anchor Vibhuti Mishra.
धन्यवाद गौरा जी. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र के आज के अंक में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम हमेशा की तरह देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक, कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरें लेकर हाजिर हैं. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार. दीपशिखा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
धन्यवाद विभूति जी.
और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी गौरा धवनलाल.
थैंक यू विभूति एंड दीपशिखा, वेलकम टू द प्रोग्राम. A quick look at the headlines. Benchmark indices end higher. Sensex settles above 75,000 mark for first time. Nifty closes at record high. And oil prices rise today after 2 days of losses due to supply concerns.
प्रमुख घरेलू शेयर बाजार आज नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर बंद. सेंसेक्स पहली बार 75,000 अंक के पार. निफ्टी ने भी सर्वकालिक उच्च स्तर को छुआ. और कच्चे तेल की कीमतों में 2 दिन की गिरावट का सिलसिला खत्म. आपूर्ति से जुड़ी आशंकाओं के कारण भाव बढ़े. प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में आज नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर बंद हुए हैं. सेंसेक्स पहली बार रिकॉर्ड 75,000 अंक के ऊपर बंद हुआ है, जबकि निफ्टी ने भी सर्वकालिक उच्च स्तर को छुआ. एफएमसीजी, ऊर्जा और धातु सेक्टर के शेयरों में लिवाली से घरेलू शेयर बाजारों को मजबूती मिली. बीएसई सेंसेक्स 354 अंक या 0.47% उछलकर 75,038 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर बंद हुआ, जबकि दिन के समय सूचकांक 421 अंक या 0.56% बढ़कर 75,105 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया. निफ्टी 111 अंक या 0.49% बढ़कर 22,754 के रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ. दिन के कारोबार में यह 133 अंक या 0.58% उछलकर 22,776 के सर्वकालिक ऊंचाई पर पहुंच गया. और रुपये का हाल जानते हैं. विदेशी मुद्रा बाजार में आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 83.19 रूपये पर बंद हुआ. विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार में 104.04 पर कारोबार कर रहा था. और अब अंग्रेजी में स्टॉक का हाल बता रही हैं मेरी सहयोगी गौरा.
लेट्स टेक अ लुक एट सम मोर डिटेल्स फ्रॉम द स्टॉक मार्केट. Benchmark indices ended at fresh closing highs today. The Sensex settled above the record 75,000 mark for the first time, while the broader Nifty scaled a fresh lifetime high on gains in FMCG, energy and metal stocks. The 30-share BSE Sensex jumped 354 points or 0.47% to close at an all-time high of 75,038. During the day, the index rose 421 points or 0.56% to hit a high of 75,105. The NSE Nifty advanced by 111 points or 0.49% to close at a record peak of 22,754. During the day, it jumped 133 points or 0.58% to reach a lifetime intraday peak of 22,776. From the Sensex basket, ITC, Kotak Mahindra Bank, Bharti Airtel, State Bank of India and Asian Paints were the major gainers. Maruti, HDFC Bank, Larsen & Toubro and Mahindra & Mahindra were among the laggards. In the broader market at the BSE, the mid-cap index gained 0.9% and small-cap index rose 0.46%. In sectoral indices at the BSE, oil and gas index rose 1.75%, the energy sector jumped 1.7%, and the metals sector moved up 1.66%. In contrast, auto and utility indices ended in the red. Deepshika, there has been, I think, optimism, particularly when the new financial year started, that the markets would rise and actually scale new levels. So do you think this has happened rather fast, or this was the expected periodicity for them?
Thank you, Gaurang. Obviously, you know, we've seen projections, and the new financial year has started. The economic projections for the Indian economy mostly have been revised upwards. So there was this sense of optimism building up, and if you look at the high frequency indicators, they have remained very robust. So definitely, if you look at the local Indian story, that remains fairly attractive for investors. And investors are also, if you see, they are looking at the outcome of the general election. That is also leading to some buildup of the momentum. So I think all these factors sort of played on, and they've sort of worked on investors' minds. So that's why we saw these, you know, great climbs as we saw.
Right.
दीपशिखा जी, हम ये देखते हैं कि अगर पिछले 10 साल की तुलना करें तो लगातार हमने देखा कि जो कहां 25,000 के आसपास से आज 75,000 के आसपास है, और आप जैसे जो बाजार के जानकार हैं वो ये भी कहते हैं कि मार्च 2025 तक ये 86,000 के आसपास पहुंच सकता है।
जी, ऐसी आशा की जा रही है, क्योंकि अगर आप देखें कि विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में क्या स्थिति है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक बहुत, और बहुत सारे फॉरेन एजेंसीज जो हैं उन्होंने भी कहा है, ब्राइट स्पॉट की तरह है। तो कोविड का पीरियड जो है वो काल बहुत मुश्किल गुजरा, और लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था उस मुश्किल दौर से भी काफी मजबूती से निकलकर बाहर आई है, और आगे के जो प्रोजेक्शंस हैं उस हिसाब से लग रहा है, सारे आर्थिक विश्लेषक ये कहते हैं कि बहुत मजबूती रहेगी अर्थव्यवस्था में। जो इंडिकेटर्स हैं वो भी काफी अच्छे आ रहे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट था, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार की तरफ से भी किया जा रहा था, अब निजी क्षेत्र का भी कैपिटल एक्सपेंडिचर चालू हो गया। तो जो ये एक साइकिल था, ये मोमेंटम को बरकरार रखेगा आगे जाते हुए। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये जो स्टॉक मार्केट है उसको भी बल देगा, और इसीलिए ये उम्मीद की जाती है कि स्टॉक मार्केट जो है हो सकता है नई ऊंचाइयों को छुए आगे चलकर।
सो दीपशिखा, व्हेन वी लुक एट यू नो द पर्सपेक्टिव ऑफ अ रिटेल इन्वेस्टर, इट्स ऑलवेज अ टॉस अप फॉर देम, because the long term perspective is positive, and people and analysts say that, you know, hold it for the long term, you can't go wrong. But then we see the market really going up, optimism builds up, but then there's a correction. So what advice will you give them? I mean, is it to periodically keep booking profits, or stay long term invested, or choose the sectors accordingly?
Absolutely. Gaurang, if you just, you know, if you go by what Vibhuti ji just said, you know, Sensex from 25,000 to 75,000. So the long-term story has definitely played out, and it has benefited investors. So if you are patient and you are looking at long-term, there is definitely India story which is holding out for you. Even in the short and medium term, I think if you're hedging your bets well, and if you're looking at sectors which are seeing a lot of impact of, say, higher government investment, or sectors which are doing very well in terms of numbers. If you look at the auto sales, so some of the auto companies have done tremendously well. So if you're very focused and going with precise information and data on this, hedging your bets well, I think you have a very attractive story to go forward to look at.
एशियाई और यूरोप के बाजार का हाल जान लेते हैं। हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स को छोड़कर प्रमुख एशियाई शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए। हैंगसेंग में 1.80% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.70% नीचे बंद हुआ। जापान के निक्केई और दक्षिण कोरिया के कोस्पी दोनों में आधा आधा प्रतिशत की गिरावट आई। समाचार तैयार किए जाने तक सभी प्रमुख यूरोपीय बाजार लाभ के साथ कारोबार कर रहे थे। जर्मनी का डेक्स 0.70%, लंदन का फुटसी 0.60% और फ्रांस का कैक 0.50% से ऊपर कारोबार कर रहे थे। दीपशिखा जी, जियो पॉलिटिकल टेंशन है, इसके बावजूद भी ये दो दिन हमने तेल की कीमतों में गिरावट देखा। अब जहां तक शेयर बाजार की बात है तो थोड़ा सा एशिया को अगर छोड़ दें, हैंगसेंग को छोड़िए, तो ठीक कारोबार कर रहा है, तो इसके पीछे आप क्या देखती हैं?
देखिए, जो जियो पॉलिटिकल टेंशन जो है, कुछ पिछले हफ्ते पिछले कुछ दिन में जो एक बहुत बिल्टअप सा लग रहा था, और वही चीज क्रूड के प्राइसेस में भी दिख रहा था। आपने देखा कि उसमें वृद्धि हो रही थी, और क्योंकि खासतौर से आउटपुट नहीं बढ़ा रहे हैं ओपेक कंट्रीज, तो वो फैक्टर्स थोड़े प्ले कर रहे थे। और ये उम्मीद भी बनी हुई थी विश्व के बाजार में कि यूएस फेड जो है, इंडिकेशन है कि शायद वो कट जो है, जिसकी बातचीत चल रही है और जिसकी उम्मीद की जा रही है, वो होगा। तो ये जो पूरे फैक्टर्स हैं, ये बिल्डअप हो रहे थे, और उन्हीं का असर जो है अगर आप देखें बाकी बाजारों में भी नजर आया। लेकिन अब ये जो आज का डेटा आया है अमेरिका का, जो इन्फ्लेशन का, उसका असर जो है और मार्केट का उसका जो रीडिंग रहेगा, वो जो है कल का जो कारोबार होगा उसको खास तौर से वो बहुत अहम होगा ये देखने के लिए कि मार्केट्स जो है आगे डायरेक्शनली किस दिशा में अब जाती हैं, क्योंकि इसको वो किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, ये बहुत ही अहम रहेगा।
A quick look at the U.S. market. The U.S. shares finished a volatile session with mixed notes yesterday. The S&P 500 and the Nasdaq indices settled marginally higher, while the Dow Jones ended in negative territory on caution ahead to the release of the consumer price inflation data. At the closing bell, the Dow Jones Industrial Average Index edged down 0.02%, the S&P 500 Index rose 0.14%, and the tech-heavy Nasdaq Composite Index increased by 0.32%. Deepshika, you did mention about the inflation data which is out, and well, as expected, it remains stubborn, and due to higher oil prices, the rentals, insurance costs, and the portfolio management fees. And though it is, and we are saying that the U.S. CPI inflation, it rose to 3.5% in March versus 3.4% the forecast. You know, though it's marginal, and Jerome Powell has already said, and he was speaking at one conference and saying that the policy rate was likely at its peak, and that this cycle, but, you know, he added that there was no rush to reduce rates. Now, keeping all this in mind, what effect, and the U.S. markets have been, you know, struggling, but they've managed to get their gains, and then they stabilized. They are within a narrow range of up and down. How do you think this data is going to affect them and then us? Because, you know, we are really at a high, and we need an indication or some kind of a trigger for a correction to take place. Do you think, do you see this panning out like that?
Gauran, you know, if you remember a few months back, the entire concern and in the market was, and there was this talk about, you know, higher for longer. And then, you know, when inflation numbers and other data started showing some positive indications, and the commentary from the Fed softened, there was this whole build up in the markets that possibly Fed could start cutting the rates or earlier than expected. Now, if you look at this data, you know, this is higher than what the market expectation was. So whether directionally what this is indicating for Fed? Did the Fed take this into account when it gave the commentary last month? And I think Fed is maintaining a very strong view on, you know, cut may not happen soon. It is going to be data driven. And this data is, I think, holding onto the view. So I think the buildup in the markets that it could have happened earlier than, you know, as Fed was indicating, probably, I think, looks distant because I think Fed would want the inflation, the lowering to be more durable and sustainable. So I think the situations become much more complex in that sense for the markets.
So do you think somewhere this complexity is also, because it's endured and it's become durable in terms of not really going down to expected levels, that it could become endemic and then somewhere get built into the system and a thing to stay?
Look, I think the Fed is trying very, raising of rates, I think most central banks are done with in terms of direction. The question now is how long they hold these higher rates for and when they start begin to cut. If you look at the geopolitical situation and how the commodity prices are moving up, if you look at the crude, directionally they've been going up. So all these factors are going to play into this. Whether the numbers and the other data, which sort of the payroll data has remained very robust in the U.S. So probably if this data continues like that, I think Fed would not want to take chances with its inflation management as a central banker. The focus would remain on, prices management.
दीपशिखा जी, थोड़ा सा एशिया का जो शेयर बाजार है उस पर लौटते हैं। हमने देखा कि यूरोप के जो शेयर बाजार हैं वो लाभ के साथ कारोबार कर रहे थे, यूएस में मिला जुला था। एशिया में लेकिन अगर केवल हैंगसेंग की बात छोड़ दें तो लगभग बाकी जो शेयर बाजार है वहां पे बिकवाली ही ज्यादा हुई। क्या कारण लगता है आपको उसके पीछे?
देखिए, एक तो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं और दूसरा अगर क्रूड कमोडिटी प्राइसेस आप देखें तो क्रूड को लेकर के अनसर्टेनिटी बनी हुई है, मिडल ईस्ट में जियोपॉलिटिक्स को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है। उसके अलावा अगर आप देखें तो चीन की जो अर्थव्यवस्था है, जो जिसको ये क्षेत्र जो है खास तौर से देखता है बाकी चीजों के अलावा, वहां पर भी अनिश्चितता बनी हुई है। और अगर अमरीकी मार्केट में और बाकी बाजारों में थोड़ा सा भी कुछ उतार चढ़ाव आता है तो यहाँ बाजार में उसको पहले से ही सेंस कर लेते हैं और वही असर दिखाई देता है। तो ये सारे दो फैक्टर्स थे, ये एशियाई बाजार पर भी प्ले अप कर रहे थे और खास तौर पे कि ये जो कमोडिटी प्राइस का अगर साइकिल चालू होगा तो उसका असर चीनी अर्थव्यवस्था पे क्या हो सकता है।
ये थोड़ी सी आपकी टिप्पणी चाहेंगे एक मसले पे, चूंकि आपने चीन की बात की। अभी यूरोपीय संसद में जो वहां के थिंक एक्सपर्ट है उन्होंने भारत की बड़ी तारीफ की थी, कहा कि वो और भारत जो है वो आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रही है और चीन का जो जीडीपी का जो औसत वृद्धि दर है वो भारत से काफी नीचे है। इस पे आपकी टिप्पणी जाना चाहेंगे।
देखिए, भारत एक अर्थव्यवस्था और एक इकोनॉमिक पावर हाउस के बतौर उभरा है और हमें बहुत अच्छी ग्रोथ भी मिली है, लेकिन अगर आप साइज इकोनॉमी देखेंगे तो हमारा साइज ऑफ इकोनॉमी जो है उसे अभी बढ़ना है। आप देखेंगे कि हम 10 ट्रिलियन का टारगेट रख रहे हैं, तो साइज ऑफ द इकोनॉमी के बतौर अभी भी भारत की अर्थव्यवस्था उस बढ़ने के कगार पर है, बढ़ रही है, ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। चीनी अर्थव्यवस्था काफी बड़ी है, वहां पे काफी इनहेरेंट समस्याएं हैं, वहां की सरकार भी बहुत सारी पॉलिसी इंटरवेंशन कर रही है ताकि अर्थव्यवस्था को ढर्रे पे ला सके, तो उनको भी देखना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह के ग्रोथ चीनी अर्थव्यवस्था ने पिछले कुछ वर्षों में देखे थे वो शायद उतनी जल्दी अब वापस नहीं आएंगे और उसके मुकाबले भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ग्रोथ रेट जो है वो काफी अच्छा रहेगा आगे चल के जो प्रोजेक्शंस हैं।
Right. So, Deepshika, you did speak about India's growth story, and there is, I think, a lot of global confidence, at least for from many analysts to say that there is a global belief in India's growth story. Now, could one of the reasons actually, you know, we're saying that China is kind of, there's a decline, they are struggling, you know, and maybe the increases are not as expected. Their oil demand, though, is increasing, but hasn't really taken off as we thought it would. Do you think somewhere there could be a global underestimation? Because China's production, China's roots in productivity and global production, the roots are very deep. And it's not so easy, really, to, you know, write off that story.
No, definitely, Gauran, I agree with you. Like I said, Chinese economy, the size of the Chinese economy is fairly large. And there are policy interventions which are happening at the government level. Their government also keeping a close watch. But, you know, the kind of growth that the Chinese economy saw in the past years before COVID, that kind of growth may not come back.
Right.
Because there are inherent issues there. So those issues, I think it will take a lot of time to sort of resolve. And plus, there is this entire global shift which we've seen in supply chains and all. That correction will be felt by the Chinese economy, which actually has witnessed large growth, a substantial part of it came on the back of large foreign investments. So I think that shift will also play out in coming years.
Right. We move on to oil prices. Oil prices rose today after 2 days of losses as a deadlock in the Gaza ceasefire talks renewed uncertainty about the security of supply from West Asia. Brent crude oil futures was up at $89.78, whereas Western Texas Intermediate was also higher at $85.60 when reports last came in. Quickly, Deepshika, wanting to understand your take on, so of course, escalating tensions in the Middle East and keeping oil demand intact, though talks for a ceasefire are on. How do you see oil prices moving up now? Because now they've started rising.
Gauran, you know, while the geopolitical factors are playing out, also you need to see the supply situation is not really improving in the sense, I think the OPEC Plus is determined not to really raise production. And if the economy, the Western economy and the European economy, they turn a corner and they start witnessing growth, obviously the demand will also spike. So that will also play out. But I think right now it is this uncertainty and the geopolitical crisis which is sort of building in the Middle East, which is having an impact on the crude.
Right.
दीपशिखा जी, देखिए साफ तौर पे अगर देखें तो हालांकि जो दो दिन जो तेल की कीमतों में जो गिरावट दर्ज किए गए हैं, ये माना जा रहा है, चर्चा है कि जो खान यूनिस से जो सेना की वापसी हुई है इजरायली सेना की, उसको लेकर के और जो सीज जो संघर्ष विराम के लिए जो बातचीत की थी उसके लिए लेकर हुआ है। लेकिन इसके साथ में ये देखिए कि इधर रूस जो यूक्रेन है उसका टेंशन बना हुआ है और इजराइल के साथ भी, इजराइल अगर खान यूनिस से वापस आ रहा है तो रफा की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका भी कह रहा है कि जो उसकी कार्रवाई है उसकी जानकारी उसको नहीं है, लेकिन इजराइल कट जो है वो जो उसकी जिद है वो बनी हुई है। तो आखिर ये फिर गिरावट कैसे आई, फिर तेजी कैसे आई, क्या आशंकाएं हैं इसके पीछे?
विभूति से देखिए, आशंकाएं जो है कि उतार चढ़ाव इसीलिए चल रहा है क्योंकि एक तो आपका प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं ओपेक नेशन, और दूसरा चीज है कि जो मिडिल ईस्ट में, अगर आप देखें यूरोप में जो जियोपॉलिटिकल संकट था वो तो अभी दूर हुआ ही नहीं है, वो चल रहा है। वो ऐसी कभी कभी नर्वसनेस हो जाती है कि वो कभी भी बढ़ सकता है। मिडिल ईस्ट में कुछ चीजें, मतलब कुछ मूवमेंट हुए हैं, लेकिन अभी भी अनसर्टेनिटी जो है बराबर बनी हुई है। तो ये पूरे मिले जुले फैक्टर्स जो हैं, और दूसरा जब आर्थिक कोई डेटा आ जाता है वो कहीं ना कहीं प्ले करता है कि अगर अमरीकी इकॉनमी जो है लगता है कि थोड़ा स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ रही है तो हो सकता है डिमांड और बढ़ जाए, तो वो फैक्टर भी प्ले कर जाता है। तो अभी खासतौर से जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनी हुई है, रोज उतार चढ़ाव आ रहा है, तो हालांकि जो अनाउंसमेंट्स आए हैं इजराइल की तरफ से भी और बाकी भी, तो लेकिन मार्केट को वो संतुष्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो जो अनसर्टेनिटी है वो बरकरार है, जो ऐसा लग रहा है इन्वेस्टर्स के मन में, और इसीलिए जो नर्वसनेस है उसको लेकर के वही ये उतार चढ़ाव को बहुत ड्राइव कर रहा है।
जी, सोना और चांदी का हाल जानते हैं। आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून अनुबंध के लिए सोना बढ़त पर कारोबार कर रहा था। सोना 45 रूपये बढ़कर 71,385 रूपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। समाचार तैयार किए जाने तक मई अनुबंध के लिए चांदी 230 रूपये बढ़कर 82,680 रूपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। वैश्विक बाजारों में दिन के कारोबार में कॉमेक्स पर सोना $2,366.50 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी $28.20 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। दीप शिखा जी, तीन महीने में लगभग 8,746 रुपये सोने की कीमत बढ़े हैं, क्या कहेंगे आप? ये डर है, युद्ध का तनाव है, लोग जोखिम से डर रहे हैं, क्या कारण क्या है?
बिल्कुल, सोना तो जो है बिल्कुल अलग दिशा में जा रहा है विभूति जी, और जियोपॉलिटिकल टेंशन तो है, जो अनसर्टेनिटी आ जाती है तो से भी निवेशक उसकी तरफ जाते हैं, लेकिन सोने की जो मांग है वो जैसे चीन से काफी मांग है क्योंकि चीनी अर्थव्यवस्था उतना अच्छा नहीं कर रही है, तो वहां पे भी लोग जो है सोने की तरफ काफी आकर्षित हो रहे हैं। उसके अलावा जो आपके सेंट्रल बैंक हैं, जैसे हमारा रिजर्व बैंक भी है, तो दुनिया के जो सेंट्रल बैंक हैं, चूंकि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो उन्होंने भी सोने की काफी खरीदारी की है, तो ये सारे मिले जुले फैक्टर्स जो हैं ये सोने को काफी आकर्षक बनाए हुए हैं, और अब तो निवेशक इसीलिए वो असर दिख रहा है कि वो अलग 72 आज उसने छुआ था, तो अलग दिशा में वो जा रहा है।
राइट, सो व्हेन वी लुक एट द गोल्ड प्राइसेस इन टर्म्स ऑफ सीइंग अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड, यू नो नॉर्मली दे से कीप गोल्ड, कीप इट लॉन्ग टर्म, इट विल फॉलो इट साइकिल एंड इट विल गो अप। हियर इट्स गिविंग स्टिफ कॉम्पिटिशन टू द स्टॉक्स एंड द स्टॉक मार्केट। वुड यू एडवाइज पीपल, नॉर्मली पीपल से अबाउट 10-15% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी इन गोल्ड, वुड यू एडवाइज देम टू प्रोबेबली इंक्रीज दिस एज यू जस्ट बिकॉज टेंशन आर देयर, पीपल एंड कंट्रीज आर अक्यूमुलेटिंग?
Gauran, if you look at the gold, investment, gold has given very good returns to people. So definitely, I think investors need to hedge their bets and look at maybe rebalancing. But definitely, the way the stock market and especially the domestic stock market is going, and if you look at the economic fundamentals that are driving the stock market, I think they will need to carefully hedge their bets on, because stock market definitely offers good potential to investors, and financial markets have been doing well. So all these factors need to sort of be taken into account when you actually start thinking of, you know, moving your allocation or making a higher allocation for the yellow metal.
आप जैसे बाजार के जानकार लोग ये भी कहते हैं कि सोना अभी और बढ़ेगा, इसकी रफ्तार यहीं पे आके वो नहीं ठहरेगी। ऐसे में बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे कि जो हमारे छोटे निवेशक हैं, जो जिन लोगों को शादी ब्याह और किसी काम के लिए सोने की खरीदारी करनी पड़ती है, उन्हें आप क्या कहेंगे?
देखिए, जिनको शादी ब्याह के लिए खरीदना है, मतलब उनकी तो इमीडिएट जरूरत है विभूति जी, तो उनके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है, उनको खरीदना ही होगा, कि जब उनको लगता है कि थोड़ा सा गिर रहा है तो आप खरीद लीजिए।
right.
बाकी डायरेक्शनली जिस तरह सोना को देखा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि सोने में बढ़त होगी।
राइट, एब्सोल्युटली व्हाट नीड्स टू बी डन, दीपिका, यू आर एब्सोल्युटली राइट, एंड वी रियली लाइक टू थैंक यू फॉर योर इनपुट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम।
थैंक यू।
listeners a quick look at this news item. The BSE and NSE equity markets will be closed for trading on Thursday due to Eid al-Fitr. Additionally, India's largest agricultural commodity exchange, NCTEX, will also remain closed tomorrow. Meanwhile, MCX will be shut for the first session from 9 a.m. to 5 p.m., but will resume trading after 5 p.m. Equity markets will remain closed on the 17th of April for Ram Navami. And now, before we close, a quick look at the headlines. Benchmark indices end higher. Sensex settles above 75,000 mark for first time. Nifty closes at record high. And oil prices rise today after 2 days of losses due to supply concerns. And that's it in today's program. Namaskar.
Namaskar. Market Sarkar.